अध्याय 22 मालवा का परमार वंश उत्पत्ति। परमारों की उत्पत्ति के विषय में दो मत प्रचलित हैं। एक मत पद्मगुप्त परिमल की जनश्रुति पर आधारित है और दूसरा अभिलेखों पर। पद्मगुप्त की जनश्रुति के अनुसार वशिष्ठ के पास कामधेनु थी, जिसे विश्वामित्र ने चुरा लिया। अपनी गाय प्राप्त करने के लिए वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। अग्निकुंड से एक वीर उत्पन्न हुआ, उसने विश्वामित्र से कामधेनु छीनकर वशिष्ठ को दे दी। वशिष्ठ ने इस वीर का नाम परमार रखा। पर का अर्थ है शत्रु और मार का अर्थ है विनाशक। परमार का अर्थ शत्रु विनाशक है। कुछ विद्वानों ने अभिलेखों के आधार पर परमारों को राष्ट्रकूटों से उत्पन्न मानते हैं। हरसौल अभिलेख में परमार वंश को राष्ट्रकूट वंश से उत्पन्न बताया गया है। परमार वंश की विभिन्न शाखाएं आबूर, बागड़, जालोर और मालवा आदि प्रदेशों में राज्य करती थी। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण शाखा मालवा की थी। प्रारंभिक राजा, इस वंश के प्रारंभिक राजा उपेंद्र वैरिसिंह प्रथम, शीयक प्रथम, वाकपति प्रथम, वैरिसिंह द्वितीय थे। इनके विषय में अधिक ऐतिहासिक ब्यौरा नहीं मिलता। डॉक्टर गंगुली प्रारंभिक परमार राजाओं को राष्ट्रकूटों के अधीन मानते हैं। शीयक द्वितीय परमार वंश का यह सर्वप्रथम महत्वपूर्ण राजा था। सिंहासन पर बैठने के समय यह राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तिथि के अधीन था। इस समय सौराष्ट्र में चालुक्य वंशी अवनी व वर्मन योगराज द्वितीय का राज्य था। शीयक द्वितीय ने इसे पराजित किया। पद्मगुप्त के नवशाशांक चरित का कथन है कि शीयक द्वितीय ने हुड स्त्रियों को विधवा कर दिया था। यह हुड राज्य मालवा के उत्तर पश्चिम में था। खजुराहो अभिलेख का कथन है कि चंदेल नरेश यशोवर्मन ने मालवों को पराजित किया था। संभवतः इस समय मालवा का राजा द्वितीय था। इस विजय के परिणाम स्वरूप चंदेलों ने अपनी राज्य सीमा मालवा नदी तक विस्तृत कर ली। यह नदी संभवतः बेतवा और वेत्रवती थी। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तिथि 968 ईस्वी में मर गया। शीयक द्वितीय ने इस अवसर से पूरा लाभ उठाया और राष्ट्रकूटों के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। कृष्ण तिथि के पश्चात उसका भाई खोटिग्ध सिंहासन पर बैठा। इसने शीयक द्वितीय को पुनः अपने अधीन करना चाहा। नर्मदा नदी के तट पर कलिघट्ट नामक स्थान पर दोनों के बीच 972 ईस्वी में युद्ध हुआ। इस युद्ध का उल्लेख नागपुर अभिलेख में हुआ है। इस युद्ध में पांगंड की परमार शाखा के नरेश कंक ने शीयक की सहायता की। अंत में शीयक विजयी हुआ। शीयक ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मानिकखेट को लूटा। इस विजय के परिणाम स्वरूप परमार राज्य ताप्ती नदी तक विस्तृत हो गया। मुंज 973 ईस्वी से 995 ईस्वी तक। लगभग 973 ईस्वी में शीयक द्वितीय की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उसका पुत्र मुंज परमार राज्य का अधिकारी बना। प्रबंध चिंतामणि के मुंज के जन्म के विषय में एक मनोरंजन विवरण मिलता है। इसके अनुसार शीयक द्वितीय के कोई पुत्र न था। एक दिन उसे एक बालक मुंज घास पर पड़ा हुआ मिला। वह बालक को घर ले आया और उसे अपने पुत्र की भांति पाल पोस कर बड़ा किया। मुंज घास पर मिलने के कारण उसका नाम भी मुंज रखा गया। मुंज के गोद लिए जाने के पश्चात शीयक को अपनी रानी से एक अपना पुत्र हुआ। उसका नाम सिंधुराज रखा गया। परंतु शीयक मुंज से इतना प्रेम करता था कि उसने उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। मुंज इतिहास में वाकपति और उत्पल राज्य के नाम से भी विख्यात है। मुंज अपने समय का एक परम वीर और सुयोग्य राजा था। उसने अपने समय के अनेक राजवंशों से युद्ध किया और परमार राज्य को अभूतपूर्व गौरव प्रदान किया। हुड़ों पर विजय। अपने पिता की भांति मुंज को भी हुड़मंडल से युद्ध करना पड़ा। विक्रमादित्य प्रथम के कोथेम दानपत्र से प्रकट होता है कि मुंज ने हुड़ों को पराजित किया था। कुहिलों पर विजय। मुहिल वंश मेवाड़ में राज्य करता था। इस समय यहाँ शक्ति कुमार का राज्य था। 997 ईस्वी के हस्तिकुंडी अभिलेख से ज्ञात होता है कि मुंज ने अपनी गजसेना की सहायता से कुहिलों की राजधानी आघाड़ पर आक्रमण किया और उसे लूटा। इस विजय के परिणाम स्वरूप कुहिल राज्य के कुछ भाग पर मुंज का अधिकार हो गया। शक्ति कुमार को हस्तिकुंड के राष्ट्रकूट नरेश धवल ने सहायता दी। संभव है कि इस सहायता से शक्ति कुमार ने अपने खोए हुए प्रदेश का कुछ भाग पुनः प्राप्त कर लिया हो। कलचुरी वंश से युद्ध। कलचुरी वंश का राजा युवराज द्वितीय मुंज का समकालीन था। उदयपुर अभिलेख से प्रकट होता है कि मुंज ने इस पर आक्रमण किया और इसकी राजधानी त्रिपुरी पर अधिकार कर लिया। युद्ध में युवराज के अनेक सेनापति हताहत हुए। चामानों से युद्ध। नाडोल में चामानों की एक शाखा राज्य करती थी। इस समय इसका राजा बलिदास था। मुंज ने इस पर आक्रमण करके इसे पराजित किया। इस विजय का उल्लेख कोथेम अभिलेख में भी हुआ है। इसका कथन है कि उत्पल राज के अभियान से चामानों की प्रजा भयभीत हो गई। इस विजय के परिणाम स्वरूप मुंज ने आबू पर्वत तथा किरादू का निकटवर्ती प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया। तत्पश्चात इसने नाडोल पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, परंतु उसे इस कार्य में सफलता नहीं मिली। सिंधु अभिलेख में बलिदास द्वारा मुंज की सेना की पराजय का उल्लेख है। गुजरात के चालुक्य पर विजय। गुजरात में चालुक्य वंश का राजा मूलराज प्रथम का राज्य था। मुंज ने इस पर आक्रमण किया और इसे परास्त कर दिया। मूलराज ने मारवाड़ के मरुस्थल में सपरिवार शरण ली। बीजापुर अभिलेख से प्रकट होता है कि मुंज ने गुर्जर नरेश की शक्ति नष्ट कर दी थी और उसकी सेना को हस्तिकुंडा के राष्ट्रकूट राजा धवल के राज्य में शरण लेनी पड़ी थी। लाट पर विजय। उदयपुर अभिलेख का कथन है कि मुंज ने बारप्प को परास्त किया था। बारप्प कल्याणी की चालुक्य शाखा के राजा तैलदीप्ति का सेनापति था। यह लाट में शासन कर रहा था। कल्याणी के चालुक्यों से युद्ध। कल्याणी की चालुक्य शाखा का राजा तैलदीप्ति मुंज का कट्टर शत्रु था। मुंज ने इसे 6 बार परास्त किया था। जब वह 7वीं बार तैल पर आक्रमण करने के लिए चला तो इसके मंत्री रुद्रादित्य ने उसे रोकने की चेष्टा की, परंतु मुंज न माना। मुंज ने तैल के राज्य पर आक्रमण किया और उसके भीतर दूर तक घुसता चला गया। अब उसके मंत्री रुद्रादित्य को अपने स्वामी के विनाश का पूर्वाभास हो गया और उसने अग्नि में जलकर आत्महत्या कर ली। उधर मुंज को तैल ने घेर लिया और बंदी बना लिया। कारा में मुंज का तैल की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। कुछ समय पश्चात मृणालवती को जब यह ज्ञात हुआ कि मुंज कारा से निकल भागने की योजना बना रहा है तो उसने इसकी सूचना अपने भाई को दे दी। तैल ने मुंज को अनेक प्रकार से अपमानित कर उसकी हत्या कर दी। तैल और मुंज के युद्ध और मुंज की हत्या का उल्लेख अभिलेखों और आईन अकबरी में भी हुआ है। मुंज अपने समय का एक पराक्रमी नरेश था। उसने परमार राज्य को संगठित किया और उसकी वृद्धि की। यह पूर्व में भिलसा तक, पश्चिम में साबरमती तक, उत्तर में झालावाड़ की दक्षिणी सीमा तक और दक्षिण में ताप्ती नदी तक विस्तृत था। मुंज योद्धा होने के साथ साथ एक महाकवि और साहित्य तथा कला का आश्रय दाता था। उदयपुर अभिलेख में की विद्वता की प्रशंसा की गई है। पद्मगुप्त उसे सरस्वती का निवास बताता है। प्रसिद्ध विद्वान पद्मगुप्त उसकी सभा में रहता था। उसने नवशशांक चरित लिखा है। इसके अन्य सभासदों में धनंजय और धनिक के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। धनंजय ने दसपुर और धनिक के यशोरूपावलोक की रचना की। मुंज ने कली में ही हलायुद्ध अमित गति और शोभन नामक विद्वान हुए। उन्होंने अपनी रचनाओं से तत्कालीन साहित्य को समृद्ध किया। मुंज निर्माण कार्यों में भी बड़ी रुचि रखता था। उसने अनेक मंदिरों और तंडांगों का निर्माण कराया। धारा को मुंज सागर आज भी विद्यमान है। धर्मपुरी और उज्जैन के अभिलेखों से प्रकट होता है कि मुंज ने पृथ्वी बल्लभ, श्री बल्लभ और अमोघ वर्ष की उपाधियां धारण की थी। यह राष्ट्रकूट उपाधियां थी जिन्हें मुंज ने अपना लिया था। सिंधुराज 995 से 1000। यह मुंज का छोटा भाई था। इसका सर्वप्रथम कार्य चालुक्य नरेश द्वारा किए गए अपने भाई के पराभव का बदला लेना था। इसने तैलदीप्ति के पुत्र उत्तराधिकारी सत्याश्रम पर आक्रमण किया और उसे पराजित करके अपने राज्य के खोए हुए प्रदेश पर पुनः अधिकार कर लिया। अपने भाई की भांति इसे भी लाट और गुजरात से युद्ध करना पड़ा। लाट में इस समय चालुक्य के बारप्प का उत्तराधिकारी गोंगीराज राज्य कर रहा था। इसे सिंधुराज ने पराजित कर दिया। गुजरात में मूलराज प्रथम का पुत्र उत्तराधिकारी चामुंडराज शासन कर रहा था। सिंधुराज ने उस पर भी आक्रमण किया परंतु चामुंडराज ने उसे पराजित कर दिया। नवशशांक चरित का कथन है कि दक्षिण में एक नागवंशी राजा था। उसके पड़ोस में ही असुर नरेश बज्रकूश का राज्य था। बज्रकूश से भयभीत होकर नागराज ने सिंधुराज से सहायता मांगी। सिंधुराज ने विद्याधरी की सहायता से बज्रकूश पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। इस युद्ध के पश्चात नागराज ने अपनी पुत्री शशि प्रभा का विवाह सिंधुराज के साथ कर दिया। विद्वानों ने नागराज का समीकरण बस्तर राज के नागवंशी नरेश के साथ किया है। असुर नरेश मध्य प्रदेश के बजराज भी अनार्य मान जाति का राजा था। विद्याधरों का समीकरण थाना के सिलहारों के साथ किया गया है। इनका राजा अपराजित था। इस समय दक्षिणी कौशल में सोमवंश का राज्य था। सिंधुराज ने इस पर भी आक्रमण किया और उसे पराजित किया। सिंधुराज ने अपरांत को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। उदयपुर प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि सिंधुराज ने हुड़ो से युद्ध किया और उन्हें पराजित किया। इसी समय बागंड के सामंत परमार चंडप ने सिंधुराज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, परंतु सिंधुराज ने उसका दमन कर दिया और बागंड को अपने अधीन बनाए रखा। भोज 1000 से 1055। सिंधुराज की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र भोज परमार वंश का राजा हुआ। यह भारत के प्रसिद्ध राजाओं में गिना जाता है। इसने अपने समय के अनेक राजवंशों से युद्ध किया। चालुक्य से युद्ध। इस पीढ़ी में भी कल्याणी के चालुक्य वंश और परमार वंश के बीच युद्ध हुआ। मेहतुंग और भोज चरित से इस परंपरागत संघर्ष का प्रमाण मिलता है। यद्यपि इसके विवरण पूर्ण से ऐतिहासिक नहीं है। इसका कथन है कि भोज ने चालुक्य ने स्थल को परास्त करके बंदी बना लिया और अंत में उसका वध करा दिया। सर आर्जी भंडारकर का मत है कि चालुक्य ने स्थल नहीं वरन उसका पुत्र पौत्र विक्रमादित्य पंचम था। इसके विरुद्ध ओझा और गंगुली का मत है कि अजय सिंह द्वितीय था। यही मत अधिक तर्क संगत प्रतीत होता है। भोज ने जय सिंह द्वितीय पर आक्रमण किया। कुलेनूर अभिलेख के मतानुसार इस आक्रमण में भोज को कलचुरी नरेश गांगे देव और चोल नरेश के राजेंद्र से सहायता प्राप्त हुई। तीनों की सम्मिलित सेनाओं ने जयसिंह को पराजित किया। परंतु बेलगांव अभिलेख से प्रकट होता है कि अंत में जयसिंह ने आक्रमणकारियों को भगा दिया और अपने खोए हुए प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया। इस कार्य में जयसिंह को अपने सामंत वाछीराज से बड़ी सहायता मिली और एक अभिलेख का कथन है कि वाछीराज ने मालवों को पराजित किया था। इंद्ररथ की पराजय उदयपुर प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि भोज ने इंद्ररथ नामक एक राजा को पराजित किया था। इस राजा का उल्लेख राजेंद्र चोल के तिरुवल्लंगदु अभिलेख और तिरुमलाई अभिलेख में भी हुआ है। डॉक्टर गंगुली के मतानुसार इंद्ररथ कलिंग के गंग वंश के अधीन सामंत शासक था। लाट विजय इस समय लाट में कीर्तिराज शासन कर रहा था। पलवन अभिलेख और उदयपुर प्रशस्ति से सिद्ध होता है कि भोज ने कीर्तिराज को पराजित किया था और लाट पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। कोंकण विजय कोंकण में शिलाहार वंशी केशीदेव का राज्य था। भोज ने इसे परास्त कर अपने अधीन कर लिया। मुसलमानों से युद्ध 1008 ईस्वी में महमूद गजनबी ने भटिंडा के शाही नरेश आनंदपाल पर आक्रमण किया था। फरिश्ता के वर्णन से प्रकट होता है कि उज्जैन ग्वालियर कालंजर कन्नौज दिल्ली और अजमेर के राजाओं ने आनंदपाल की सहायता की थी। यहां उज्जैन के राजा से भोज का तात्पर्य है। गंदीजा के कथनानुसार महमूद जब 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर को लूटकर गजनी वापस जा रहा था तो परमदेव के नेतृत्व में हिंदुओं ने उस पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। सीके एस मुंशी का मत है कि परमदेव भोज परमार था। फरिश्ता का कथन है कि 1043 ईस्वी में दिल्ली के राजा ने अन्य हिंदू राजाओं के साथ मुसलमानों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की। इनसे हांसी थानेश्वर नगरकोट आदि छीन लिए। संभव है कि इस कार्य में भोज ने भी सहयोग दिया होगा। कदाचित इसी आधार पर उदयपुर प्रशस्ति का कथन है कि भोज ने तुरुषकों को पराजित किया था। कलचुरी वंश युद्ध उदयपुर प्रशस्ति और कलवन अभिलेख से ज्ञात होता है कि भोज ने त्रिपुरा के कलचुरी नरेश गांगी देव पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। भोज को इस विजय की पुष्टि पारिजात मंजरी से भी होती है। चंदेलों से युद्ध यह अभिलेख से ज्ञात होता है कि भोजदेव और कंचुली चंद्र कानिकुब्ज नरेश के विनाशक की शिष्यवत आराधना करते थे। हम जानते हैं कि कानिकुब्ज नरेश प्रतिहार वंशी राज्यपाल का विनाश चंदेल नरेश विद्याधर ने किया था। विद्याधर भोज परमार का समकालीन था। अतः स्पष्ट है कि अभिलेख में उल्लिखित भोजदेव भोज परमार ही था। संभवतः भोज ने बुंदेलखंड में अपना राज्य विस्तार करने का प्रयत्न किया था परंतु विद्याधर ने उसे पराजित कर दिया। कच्छप घात वंश से युद्ध ग्वालियर पर प्रतिहारों का अधिकार था। इसे चंदेल नरेश धंग ने प्रतिहारों से छीनकर कच्छप घात वंश के अपने सामंत व्रज दामन को दे दिया था। तभी से ग्वालियर से कच्छप घात वंश चंदेलों की अधीनता में शासन कर रहा था। भोज के समय ग्वालियर में कच्छप वंश के राजा कीर्तिराज का राज्य था। ऐसा प्रतीत होता है कि भोज ने इस पर आक्रमण किया परंतु उसे सफलता न मिली। शशबाहु अभिलेख से प्रकट होता है कि कीर्तिराज ने मालवा सेना को परास्त किया था। यह अनुमान किया जाता है कि विद्याधर ने चंदेल ने अपने सामंत का आक्रमणकारी के विरुद्ध सहायता दी थी। कन्नौज पर आक्रमण उदयपुर प्रशस्ति का कथन है कि भोज ने चेरीराज इंद्रर्थ तागल भ्राम कनोटो लाट नरेश और तुरुष्को के अतिरिक्त गुर्जर नरेश को भी पराजित किया था। डॉक्टर गंगुली का मत है कि यहाँ गुर्जर नरेश से कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार नरेश का तात्पर्य है। यह संभवतः यशपाल था। भोज ने इसे पराजित कर प्रतिहार वंश का अंत कर दिया था परंतु कन्नौज पर भोज का अधिकार अधिक समय तक न रहा क्योंकि उस पर कलचुरी नरेश कर्ण ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। चाहमानों से युद्ध भोज ने शाकंभरी और नाडोल के चाहमानों से भी युद्ध किया। पृथ्वीराज विजय से ज्ञात होता है कि उसने शाकंभरी के चाहमान नरेश वारियराम से युद्ध किया और उसे मार डाला। परंतु भोज को नाडोल के चाहमान नरेश अड़हिल के विरुद्ध सफलता न मिली। सुंदी अभिलेख का कथन है कि अड़हिल ने परमार सेनापति शाण को पराजित किया और उसे मार डाला। गुहिलों का पराजय मेवाड़ में गुहिल वंश राज्य करता था। मुंज ने इस वंश के से चित्तौड़ छीन लिया था। विमल मालवशी अभिलेख से प्रकट होता है कि चित्तौड़ पर भोज का भी अधिकार रहा। चित्तौड़ में उसने त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था। गुजरात के चालुक्यों से संघर्ष। गुजरात के चालुक्य वंशी राजा चामुंडराज ने सिंधुराज को पराजित किया। वह भोज का भी समकालीन था। एक बार चामुंडराज वाराणसी की तीर्थयात्रा पर निकला और मालवा से गुजरा। भोज ने उसे रोक लिया और उसका अपमान करने के लिए उसे वस्त्राभूषण उतरवा लिए। 1022 ईस्वी में गुजरात के सिंहासन पर भीमदेव प्रथम बैठा। भोज ने इससे भी युद्ध किया। आबू में परमार नरेश धनधुक शासन करता था। भीम ने इसे अपने अधीन करना चाहा। आबू अभिलेख के कथनानुसार भीम ने आबू पर अधिकार कर लिया। धनधुक ने भागकर चित्तौड़ में भोज परमार की शरण ली। अब भोज ने गुजरात की राजधानी अनहिल वांड पर आक्रमण किया और भीम को पराजित कर उसे खूब लूटा। कल्याणी के चालुक्यों से युद्ध। पहले कहा जा चुका है कि भोज ने कल्याणी के चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय से युद्ध किया था। जयसिंह के पश्चात 1043 ईस्वी में सोमेश्वर प्रथम गुजरात का राजा बना। इसने मालवा पर आक्रमण किया और भोज को पराजित कर उसकी राजधानी धारा पर अधिकार कर लिया। परंतु सोमेश्वर के लौट जाने के पश्चात भोज ने अपने राज्य के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। फिर भी इस विजय के परिणाम स्वरूप चालुक्य वंश ने अपने राज्य की सीमा उत्तर में नागपुर तक विस्तृत कर ली। सूदी अभिलेख से भी चालुक्यों की विजय का प्रमाण उपलब्ध होता है। इसके अनुसार चालुक्यों का एक सामंत नागदेव भोजरूपी सर्प के लिए गरुण के समान था। नगई अभिलेख का कथन है कि सोमेश्वर ने धारा और जैन को जला दिया था। भोज के विरुद्ध संघ। भोज एक एक करके अनेक समकालीन राजवंशों को पराजित कर चुका था। वह चारों ओर शत्रुओं से घिरा हुआ था। अतः गुजरात के चालुक्य और त्रिपुरी के कलचुरियों ने उसके विरुद्ध एक संघ बनाया और सम्मिलित रूप से मालवा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के नेता भीम प्रथम चालुक्य कर्णचूरी थे। इस समय तक भोज वृद्ध हो चुका था, फिर भी उसने शत्रुओं का सामना किया। मेरुतंग का कथन है कि अभी युद्ध चल ही रहा था कि भोज बीमार पड़ा और मर गया। इसके पश्चात उसके उत्तराधिकारी जयसिंह ने शत्रुओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और मालवा पर शत्रुओं का अधिकार हो गया। भोज की पराजय के अन्य साक्ष्य भी मिलते हैं। कीर्ति कौमुदी का कथन है कि भीम ने भोज को पराजित किया। बड़नगर प्रशस्ति का कथन है कि भीम ने धारा पर अधिकार कर लिया था। मेरुतंग के विवरण से प्रकट होता है कि सम्मिलित सेनाओं की विजय के पश्चात कर्ण ने संपूर्ण परमार राज्य पर अधिकार कर लिया। भीम को केवल एक स्वर्ण मंदिर और शिव प्रतिमा ही मिली। भोज का व्यक्तित्व। भोज अपने समय का एक महान सेनापति था। उसने कन्नौज से लेकर कर्नाट देश तक और कलचुरी राज्य से लेकर चालुक्य राज्य तक विस्तृत भू प्रदेश को अपने सैनिक अभियानों से आतंकित कर दिया था। अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर उसके राज्य में मालवा, कोंकड़, खानदेश, भिलसा, डुगुरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और गोदावरी घाटी का कुछ भाग सम्मिलित था। उसके पूर्व परमार राज्य की राजधानी उज्जैन थी। परंतु प्रबंध चिंतामणि से प्रकट होता है कि भोज ने धारा को अपनी राजधानी बनाया। भोज एक महान निर्माता एवं कला प्रेमी था। उसने धारा नगरी को बहुसंख्यक भवनों से अलंकृत किया। उसने अपने नाम पर भोजपुर की स्थापना की। यहाँ उसने विशाल भाजसर का निर्माण कराया। किसी समय वह भारत का सबसे बड़ा सर समझा जाता था। आज भी यह परमारों के कला चातुर्य का प्रमाण प्रस्तुत करता है। उदयपुर प्रशस्ति का कथन है कि भोज ने केदारेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, सुडार, काल, अनल और रुद्र के बहुसंख्यक मंदिर बनवाकर संसार को अलंकृत किया था। अभाग्यवश आज ये मंदिर विद्यमान नहीं है। भोज एक उच्च कोटि का विद्वान था। उदयपुर प्रशस्ति उसे कविराज कहा गया है। वह काव्य, धम्म, धर्म, देश, ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्र, कला, व्याकरण, राजनीति आदि का मर्मज्ञ था। उसके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में सम्रागण, सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, राजमार्तंड, योग सूत्र वित्ति, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, चारुचया, आदित्य प्रताप सिद्धांत, आयुर्वेद सर्वस्व आदि उल्लेखनीय है। संभव है कि इनमें से कुछ ग्रंथों को उसके अधीन विद्वान सभासदों ने लिखा हो। भोज विद्वानों का आश्रयदाता था। आईन अकबरी का कथन है कि वह विद्वान का बड़ा सम्मान करता था और उसकी राजसभा में 500 विद्वान रहते थे। भोज सचरित में भोज के समकालीन अनेक विद्वानों के नाम मिलते हैं। इनमें कालिदास का भी नाम आता है। संभव है कि यह महाकवि कालिदास से भिन्न कोई अन्य कालिदास रहा हो। अन्य विद्वानों ने धनपाल और उबट के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रथम ने तिलक मंजरी और द्वितीय ने मंत्र भाष्य की रचना की। भोज ने कवि त्रिविक्रम के पुत्र भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि दी थी। स्वयं भोज की पत्नी अरुंधति एक उत्कृष्ट विदुषी थी। विद्या के प्रसार के लिए भोज ने अनेक विद्यालयों का निर्माण किया था। धारा की वर्तमान कमल मॉल मस्जिद प्रारंभ में इसी प्रकार का एक विद्यालय था। उसकी दीवारों पर आज भी वर्णमाला और व्याकरण संबंधी नियम उत्कीर्ण मिलते हैं। इस प्रकार भोज की ख्याति उसकी विद्वता और विद्या प्रेम पर अधिक आधारित है। भोज के उत्तराधिकारी भोज की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जयसिंह परमार सिंहासन पर बैठा। उसने कल्याणिक के चालुक्य वंश की सहायता से कर्ण और भीम को पराजित कर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। परंतु कुछ समय पश्चात कल्याणी के नए राजा सोमेश्वर द्वितीय और गुजरात के राजा कर्ण ने सम्मिलित रूप से मालवा पर आक्रमण किया। जयसिंह युद्ध करते हुए मारा गया और मालवा पर आक्रमणकारियों का अधिकार हो गया। परंतु जयसिंह के उत्तराधिकारी उदयादित्य ने शाकंभरी के चहमान राजा विग्रहराज द्वितीय तृतीय की सहायता से सोमेश्वर द्वितीय और कर्ण को पराजित कर अपने राज्य को मुक्त कराया। उदयादित्य के पश्चात परमार वंश में अनेक राजा हुए, परंतु उनमें कोई भी ऐसा न था जो भोजकालीन परमार वंश की कृति की पुनर्स्थापना करता। इसने परमार वंश की अवनति होती गई और अंत में वह विलुप्त हो गया। परमारकालीन वैभव परमार वंश ने मुंजर भोज जैसे परम प्रतापी राजा उत्पन्न किए थे, जिन्होंने अपनी अपनी सामरिक सफलताओं से अनेक वंश की कृति स्थापित की। युद्ध और विजेता होने के कारण के साथ साथ परमार वंश विद्या प्रेमी थे। उनमें से अनेक नरेशों ने अपनी कृतियों से संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया। वे विद्वानों के आश्रयदाता थे। उनकी राजसभा तत्कालीन विद्वत समाज के लिए महान आकर्षण की केंद्र थी। परमार नरेश महान निर्माता एवं कला प्रेमी थे। उन्होंने नवीन नगरों की स्थापना की। नगरों को भवनों निर्मंदिरों से सुशोभित किया और उनमें अनेक सर बनवाए। नगर स्थापना मुंज के मुंजपुर की स्थापना की। भोज ने थारा का पुनर्निर्माण तथा भोजपुर नामक नगर का नव निर्माण किया। उदयादित्य ने अपने नाम पर उदयपुर की स्थापना की। परमार वंश के अन्य राजा देवपाल ने देवलपुर नामक नगर बसाया। सरो का निर्माण परमार ने सरोवर के निर्माण में बड़ी अभिरुचि रखते थे। मुंज के मुंजपुर में मुंज सागर बनवाया। पल्लर के कथनानुसार भोज ने कश्मीर के कपोतेश्वर कुंड बनवाया था। उसके द्वारा निर्मित सरोवर भोज सागर अपने समय का सबसे बड़ा सर था। देवपाल ने देवलपुर में देवपल सागर का निर्माण कराया। मंदिर निर्माण मुंज ने उज्जैन महेश्वर धर्मपुरी आदि नगरों में भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। उदयपुर प्रशस्ति का कथन है कि भोज ने केदारेश्वर रामेश्वर सोमनाथ काल अनल और रुद्र के मंदिरों का निर्माण कराया। 16वीं शताब्दी का एक अभिलेख उदयादित्य द्वारा निर्मित नीलकंठेश्वर मंदिर को भारत का सबसे सुंदर मंदिर बताता है। फर्गुसन ने इस मंदिर की कलात्मकता की बड़ी प्रशंसा की है। भोजपुर में भोज के नाम पर निर्मित भोजेश्वर मंदिर है। यह मंदिर शिव मंदिर है और अपूर्ण अवस्था में होते हुए भी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार परमार काल में मोदी ने मावर महिदीपुर उन आदि स्थानों में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। इनमें से कुछ मंदिर आज भी विद्यमान हैं। उनका चौबारा डेरा मंदिर तथा नीलकंठेश्वर मंदिर आज भी अपने पूर्व वैभव का स्मरण दिलाते हैं। मोदी का शिव मंदिर भी किसी समय का कला का उत्कृष्ट उदाहरण था। इस काल के बहुसंख्यक मंदिर मुसलमानों ने तोड़ डाले और उनकी सामग्री से अपने मस्जिद बनवाए। भोजशाला भोज ने धारा में एक प्रसिद्ध विद्यालय की स्थापना की थी। इसे भोजशाला कहते हैं। मुसलमानों ने इसे तोड़कर इसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया जो आज कमल मौली मस्जिद के नाम से प्रख्यात है। इसकी दीवारों पर संस्कृत वर्णमाला एवं व्याकरण के नियम उत्कीर्ण है। इसी शाला के समीप एक सरस्वती मंदिर था जिनमें सरस्वती देवी की मूर्ति प्रतिष्ठित की गई थी। स्थापत्य परमारकालीन स्थापत्य के भी कुछ उत्कृष्ट उदाहरण मिले हैं। इनमें भोजकाल के निर्मित सरस्वती की चतुर्भुजी मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज यह ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित है। दूसरी मूर्ति पांचांगनी साधना करती हुई पार्वती की है। यह धारा में प्राप्त हुई है। साहित्य परमार काल में साहित्य की बड़ी उन्नति हुई। अनेक परमार नरेश स्वयं बड़े विद्वान थे। उदयपुर प्रशस्ति में मुंज की विद्वता की प्रशंसा की गई है। पद्मगुप्त ने अपने नवसंसांक चरित में लिखा है कि विक्रमादित्य और सातवाहन की मृत्यु के पश्चात सरस्वती ने मुंज की शरण ली थी। अभाग्यवश आज उनकी रचनाएं उपलब्ध नहीं होती, परंतु उनके ग्रंथों के कुछ उदाहरण धनिक क्षेमेंद्र आदि पर्वती लेखकों की रचनाओं में सुरक्षित हैं। मुंज ने अपने समय के अनेक प्रख्यात विद्वानों को आश्रय दिया। पहला पद्मगुप्त या मुंज की राजसभा में रहता था, इसे परिमल भी कहते हैं। इसने नवशशांक चरित लिखा। दूसरा धनंजय या मुंज का राजकवि था, इसने दशरूप की रचना की। तीसरा धनिक या मुंज का महासाध्यपाल था, इसने दशरूपावलोक रचना की। यह धनंजय कृत दशरूप पर टीका है। चौथा हला युद्ध प्रारंभ में यह राष्ट्रकूट नरेश कृष्णनाथ तृतीय की सभा में रहता था, वहाँ से यह मुंज की सभा में आया। इसने मृत संजीवनी की रचना की। यह पिंगल छंद सूत्र पर टीका है। पांचवा अमित गति, यह मुंजकालीन मालवा का विद्वान है। इसने सुभाषित रत्न दोही, श्रावकाचार, द्वात्री शतिका और धर्म परीक्षा नामक ग्रंथ लिखे। परमार नरेश भोज भारत के प्रसिद्ध विद्वानों में गिना जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उसने अनेक ग्रंथों की रचना की। यह काव्य, ज्योतिष, धर्म, दर्शन, राजनीति, व्याकरण, चिकित्सा शास्त्र, वस्तु आदि का ज्ञाता था। माधव, केशवारकर, क्षीर स्वामी, सायण आदि परकालीन विद्वानों ने उसका उल्लेख किया है। कल्लड़ का कथन है कि वह कवियों का मित्र था, उसने अनेक विद्वानों को आश्रय दिया था। आईने अकबरी का कथन है कि इसकी सभा में 500 कवि थे। इसमें धनपाल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसने तिलक मंजरी, त्रिशप पंचाशिका, पाइलक्षी और चतुवशिका टीका की रचना की। इसी समय उवट नामक विद्वान हुआ। इसने वाजसनेयी संहिता पर टीका लिखी, जिसे मंत्रभाष्य कहते हैं। भोज के ही शासनकाल में सीता नामक कवित्री हुई।